Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजांक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन. नमस्कार, कार्यक्रम में आपका मैम स्वागत है.
थैंक यू मनोज एंड थैंक यू लालिमा.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनिजा टैंक.
वेलकम सुषमा एंड थैंक यू मनोज. यस द हेडलाइंस फर्स्ट फ्रेंड्स. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड विद मार्जिनल गेन. सेंसेक्स क्लोजेस एट 81,455. निफ्टी एट 24,857. The world today wants to invest in India and world leaders are positive about India, says Prime Minister Narendra Modi. And gold jewellery demand decreases 17%, reveals World Gold Council's second quarter 2024 gold demand trends report.
घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 81,455 दर्ज हुआ. निफ्टी 24,857 पर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के बारे में वैश्विक नेताओं का है सकारात्मक रुख. यहां निवेश के लिए उत्सुक है पूरी दुनिया. और विश्व स्वर्ण परिषद की वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में दुनिया भर में स्वर्ण मांग की प्रवृत्त रिपोर्ट में कहा गया कि सोने के आभूषण की मांग 17% घटी. घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में ठीक 100 अंक यानी 0.12% लाभ के साथ 81,455 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 21 अंक यानी 0.09% की वृद्धि लेकर 24,857 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा बेहतर आज दिखा है. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.3% की वृद्धि हुई जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% लाभ में रहा.
All right, now the stocks in detail. India's equity benchmark indices Sensex and Nifty had a marginal gain today. The BSE Sensex added 100 points or 0.12% to close at 81,455. NSE Nifty added 21 points or 0.09% to close at 24,857. In Nifty, 220 companies hit their 52-week high, 19 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was up nearly 0.3%. The small-cap index advanced nearly 1%. 16 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top gainers today were Tata Motors and NTPC more than 3%, Power Grid and Bajaj Finserv 2% and Asian Paints 1.7%. Conversely, the major laggards were Sun Pharma and ITC more than 1%, Hindustan Unilever 0.9% and Bharti Airtel 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors logged gains. The top gainers were utilities nearly 2%, power 1.5%, consumer durables more than 1%. Conversely, the major laggards were FMCG nearly 1%, healthcare 0.3% and tech and information technology ended flat. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,023 companies, shares of 2,295 companies advanced and 1,607 declined and 121 remained unchanged. So, Sushma, how do you see this now? Actually, Sensex is rearing and roaring, one can say, from 70,000 to 80,000 in such a short span of time. And everyone thought, okay, after the budget, something might happen, but yes. Nothing drastic has happened. Mm-hmm. It continues to be robust.
Yes, yes. On the day of the budget, of course, there was some alarm as the markets certainly did fluctuate a lot. But then I think the markets took a little time to think over the budget and then they roared back to life. And, you know, as you said, till last week, it was there was once again a very strong bullish trend. Today, the markets have been calm. It's been more or less flat. But now, of course, the markets are looking towards the future. I think these are global cues which are impacting the market. They are looking forward to the meetings of the Federal Reserve. Going forward, you're going to have in the coming few days the Bank of England's meeting, the Bank of Japan's meeting. So all these are going to talk about rate cuts. Of course, in the case of the Federal Reserve, the U.S. Federal Reserve, it is well known that they're not going to go ahead with any rate cuts now. But still, people are hoping for some kind of signals as to what's going to happen in September, because the anticipation is that the rate cut will take place in September. So they're hoping for some kind of inkling on that. So there is what you might say, calm before the storm. They're waiting. It's actually the meeting should be starting in the evening today. And we'll have a better idea tomorrow as to what has happened.
श्रोताओं, मैम ने अभी चर्चा की फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका की केंद्रीय बैंक की बैठक के नतीजों के प्रतीक्षा चल रही है दुनिया भर में, और इस प्रतीक्षा के बीच रुपए का कारोबार आज बड़ा ही सीमित दायरे में हुआ। हालांकि कारोबार के अंत में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज एक पैसे बढ़ोत के साथ 83.72 रूपये के स्तर पर बंद हुआ है। मैम, यहां पर हम शेयर बाजार पर ही चर्चा करना चाहेंगे और बाजार का जो ये स्तर है, आपने कहा कि एक यानी आज सामान्य रहा कारोबार, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों को यदि हम देखें तो वहां थोड़ा सा लेनदेन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। यानी कुल मिलाकर अपना बाजार यानी भारतीय पूंजी बाजार जो विस्तृत आधार है, छोटी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या दर्शा रही, उनका रुझान क्या दिखा रहा?
देखिए, एक बहुत खास बात है हमारी भारतीय स्टॉक मार्केट्स का, और वो देखने को नहीं मिलता, खासकर ये किसी और स्टॉक मार्केट में आजकल तो नहीं दिखने को मिल रहा है, और वो है कि जो छोटी स्मॉल कैप कंपनीज हैं और मिड कैप जैसे आपने कहा, उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतर चल रही है, और उसके बारे में आपने बोला, वो सिर्फ हमारे देश में है, और किसी देश में और किसी स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं है। इनफैक्ट हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहां आए थे, और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही खास बात है आपकी स्टॉक मार्केट्स में कि ये छोटी और मझोली कंपनीज का ये सिलसिला इतना अच्छा क्यों है। और ये मेरे ख्याल में इसलिए है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट के जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी, आपको मालूम ही है शायद, इसके बारे में हमने काफी बात की है इस मार्केट मंत्र में, कि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने, बहुत नए सारे इन्वेस्टर्स आए हैं 2020 के बाद, और इनफैक्ट जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाहर चले गए हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर लेके गए हैं, फिर भी हमारी मार्केट बहुत स्टेबल रही है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी पूंजी लगाई है इक्विटी मार्केट्स में। तो ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट है छोटी कंपनीज में, उनमें रिसर्च करते हैं, आजकल जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स, उससे जानकारी लेके, तो वो इन कंपनीज में इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई ये आगे चल के ये जो छोटी कंपनीज हैं, मझोली कंपनीज हैं, ये बड़ी हो जाएंगी और इनका जो मुनाफा है और इनकी परफॉर्मेंस है ये अच्छी हो जाएगी।
Yes, one word which has been used repeatedly post budget is middle class, uh-huh. and everybody has been talking about the aspirations and kya khoya, kya paya, aur aage kya hai middle class ke liye. The middle class has shown a lot of faith in the small cap and mid cap. Mm-hmm. Earlier, one would think of investing only in the large caps for long term investment, as you just mentioned. Is it because of the fact that the NPAs are now reduced, maybe just to 2.8%, and public sector banks are doing well, public sector units are doing very well? Mm-hmm. All that has encouraged, and the reforms that the government has brought about in the last few years, 10 years as a whole, GST, insolvency and so on, has that all led to the growth of a healthy economy?
Yes, that's all these factors are there, definitely. When you talk about NPAs, I mean, that has improved over the last 5 or 6 years. I mean, about 6, 7 years ago, the NPAs were at a very alarming level, and now the banking sector is extremely healthy. Mm-hmm. As far as small and medium companies are concerned, I think we are, of course, an emerging economy. We have more and more new companies coming up, and our share markets are growing. So this is an area of growth. And I think investors, domestic retail investors, are also seeing this as an area of growth, and that if they get in, instead of buying shares in a blue chip company, which are rather expensive, you get in at the ground level of a small company, which is likely to do well in the future, you know. So this is, I think, as you talked about, the middle class, these retail investors are going into it. Of course, we do also have to take into account what the RBI governor has said, that there's so much of interest now in the equity markets by the middle classes that they are shifting away from their traditional, you know, safe deposits, fixed deposits in banks. And we really now have to be concerned, because the rate of deposit growth is not as high, because people are shifting, putting their faith in the equity markets. Yes. There's a feeling now that, you know, once upon a time you would think that putting money in the equity markets is a terrible risk. You could lose it all, everything would go. But when you see for the last, let's say, 5 to 6 years, there has been a sustained upward trend in the Indian equity markets. Mm. And there has been a lot of faith is being put also in the growth, India growth story, which is giving support to the stock market.
मैम आपने एक बड़ी अच्छी यानी जो रुझान देश के बैंकिंग तंत्र में देखा जा रहा है उसकी ओर इशारा किया कि वहां पर एफडी रखने पर थोड़ा सा लोगों का जो रुख है वो कम होता नजर आ रहा है बैंकिंग व्यवस्था के लिए और अर्थतंत्र के लिए यानी पूरे जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा क्योंकि बैंकों में यदि धन रखने का प्रवृत्ति घटती है तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं क्योंकि क्रेडिट देने में बैंक का हाथ तंग रहेगा कैसे परिणाम निकल सकती है और किन अर्थों में ले रहे हैं ये यानी एफडी को की घटती मात्रा पर आप
देखिए ये जो ट्रेंड है ये इतना इसमें इसका इतना बढ़ावा नहीं हुआ है कि इसके बारे में हमें बहुत चिंता करने की जरूरत है लेकिन जबकि आरबीआई के गवर्नर ने इसके बारे में बात की है तो इसके बारे में जरूर हमें सोचना चाहिए अगर बैंक्स की जैसे आपने कहा ये जो परिणाम क्या हो सकते हैं अगर डिपॉजिट ग्रोथ काफी नहीं है तो बैंक्स के लिए जो उनके पास जो राशि है जो धन है जो जिससे वो अपना क्रेडिट देते हैं ये उद्योग को और उद्योगों को और इंडिविजुअल्स को सब जगह को क्रेडिट जो देते हैं उसके ऊपर रोक लग सकती है कि जितना पेस ऑफ क्रेडिट जो हम चाहते हैं कि लोन्स दिए जाएं इनफैक्ट सरकार तो ये कह रही है बैंक्स की आप काफी ऋण नहीं दे रहे हैं लोगों को आपको और लोन्स देने चाहिए और क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए और बैंक्स जरूर कह रहे होंगे भाई हमारा डिपॉजिट ग्रोथ इतना नहीं है हमें थोड़ा स्लोली हमें करना पड़ेगा टू मैच डिपॉजिट ग्रोथ सो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए और जो आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि एक ये थोड़ी फिक्र की बात ये है कि कुछ लोग अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतना फेथ आ गया इक्विटी मार्केट्स में तो नई नई एरियाज में ये जा रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स और ये नए रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफएनओ जो कहते हैं तो और डेरिवेटिव्स वगैरह जो नई इंस्ट्रूमेंट्स में है और ये जरूरी थोड़ी सी रिस्की है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें जानकारी देनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को तो ये एक सिलसिला अब बजट में भी उन्होंने एफएनओ के ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स उन्होंने बढ़ाया हालांकि बहुत मामूली दर बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाया तो है।
जी श्रोताओं, बड़ी स्पष्ट सी सलाह हमारे विशेषज्ञ की है आपके लिए कि F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन है, उस पर यदि आप बिना सोचे समझे निवेश करते हैं तो ये एक जोखिम का मामला बन सकता है, आप सतर्क रहें। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर्राफा बाजार में सोना आज समाचार तैयार किए जाने तक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 130 रूपये बढ़त के साथ 68,700 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रही थी। वहीं चांदी भी 340 रूपये यानी 0.42% की वृद्धि के साथ 81,760 रूपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी।
ऑलराइट, वेल, गोल्ड डिमांड इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर वाज डाउन 5% अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल्स सेकेंड क्वार्टर 2024 गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट released today. As per the report, the gold demand in the second quarter of this year was 150 tons against 158 tons in the corresponding quarter last year. However, in value terms, the gold had a surge of 14% at 93,850 crore rupees against 82,530 crore rupees last year. The report further reveals that jewelry demand decreased 17% to 106 tons while investments climbed 46% at 43 tons. Record high prices is cited as the reason for dampened gold jewelry buying and the dip in recycling. But in terms of year on year, the total global gold demand increased 4% to 1,258 tons, the report added. Further, the report reads that central banks and official institutions increased global gold holdings by 183 tons, slowing down from the previous quarter but still reflecting a 6% increase year on year. Bar and coin investment decreased 5% to 261 tons in second quarter this year due to a sharp decline in demand for gold coins, says the report. In terms of global market demands, strong retail investment in Asia was counterbalanced by lower levels of net demand in Europe and North America, where profit-taking surged in some markets. On electronic gold, demand for gold in technology continued to increase, jumping 11% year-on-year, driven primarily by the AI boom in the electronic sector, which saw an increase of 14% year-on-year, the report reads. On the supply point of view, the total gold supply rose 4% year-on-year, on year, with mine production increasing to 929 tons, the report added. Sushma, a lot of statistics here, yes. But by and large, while I was reading this report, young generation, Gen X as we call them, they are not interested in gold generally, mm-hmm. and yet India continues to have a humongous demand for gold, the kind of gold reserves we have in every individual's homes,
yes.
as is Sri Dhan or whatever you may call it, is huge. Mm-hmm. What do you make of this report, high, low, not interested in coins? What do you make of this?
Well, coming to jewelry, which is what you were talking about, the stash that most people have is in terms of jewelry in India. Mm-hmm. It's a very interesting thing that I was told by a friend of mine who is Chinese, that she said we have the same reverence towards gold jewelry, you mm-hmm. know, that somebody gets married and we buy gold jewelry and we keep it at home. So she said we have the same attitudes towards gold that you have, that we should keep some gold at home. And mm-hmm. so China is also a big buyer of gold and gold jewelry. So jewelry demand has decreased, as this report says, 17%. And I think that is because, the prices are extremely high. There are globally recessionary trends. People are trying to save money. So jewelry is seen as a luxury item always. For Indians and maybe Chinese and maybe a few other places, it's considered investment. But otherwise, for the rest of the world, it's considered luxury item, gold jewelry. So that has decreased, but investments have climbed. Investments in gold have climbed, and investments in e-gold have risen. And that is because this is seen as gold is seen as a safe haven investment. That is, in times of turbulence,
yes.
you know, you buy gold and you know that you're safe with it. If you go to the equity markets, you don't know what's going to happen. They will go up and down. And so it is safe. The safest thing to have is a bar of gold or a coin of gold or now e-gold, because you know that's also being linked to the price and therefore you're quite safe. So it's a safe haven investment. And in this era of geopolitical strife, we have the war in Ukraine, we have the war between Israel and Hamas, and there's so much of geopolitical strife in the world. So this is a time when people look for a safe haven investment, and that probably has been the spur for greater investment in gold.
In this very program, Sushma, we've often talked about the gold bond scheme which the government has come out
yes.
with
huh.
and the tax benefits it gives. Mm. And often our experts have been saying that rather than investing in the proper gold, means material gold,
yeah.
invest in the gold bond because it gives you 2.5% every year.
Yes.
And the eventually, it's not taxed.
Mm.
After 8 years, you can take your money out. Mm. And at the same rate at which the gold
so
is
an attractive
time.
Instrument. Yeah.
That you think is a better option than buying
yes.
gold jewelry
so,
as,
you know,
as an investment?
No, if you're going for an investment, then certainly gold bonds or gold exchange traded funds are also there. You have gold in an e-form, electronic form. So you can invest in gold without actually buying jewelry.
Mm-hmm.
And jewelry is something that is probably, you may not get it full 24 carat.
Right.
It's mixed with other metals and then made. So when you actually try and go and sell it,
yes.
you may not get the same amount. So it's not really great as an investment.
Right.
Sushma ji, yahan par hum aapka dhyan aakrishit karna chahenge. Sone ki jo khareedari kendriya bankon dwara ki ja rahi hai us par ki jo taza rujhan hai wo 6% varshik aadhar par kendriya bankon dwara sona khareeda gaya hai. Nisandeh, yani surakshit kehne कि इसे माना जाता है सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन केंद्रीय बैंकों द्वारा ये खरीदना जब खरीदा जाता है तो हम तो यानी कह लें कि 10 ग्राम में सोचते हैं, वो टन में सोचा करते हैं और लिया करते हैं, तो ये सोने के दाम को कहां ले जाएगा? क्या लग रहा है आपको?
देखिए, ये जो गोल्ड होल्डिंग्स हैं इंक्रीज्ड, ये भी एक सेफ हेवन की तरह है कि जो कंट्रीज जो हैं चाहते हैं कि उनके पास कुछ होना चाहिए धन. अब आपको याद होगा, अभी रिसेंटली ही इंडिया ने भी उनकी जो गोल्ड स्टॉक्स थी वो लंदन में पड़ी हुई थी. तो वो वहां से उन्होंने कहा कि भाई, पहले तो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी ये सोना रखने के लिए, अब हमारे पास है तो हम वहां से ले आते हैं. तो वहां से ले आए. और ये जो है, मेरे ख्याल में ये गोल्ड होल्डिंग्स होने के मेरे ख्याल प्राइसेस आप सोने की बात कर रहे हैं.
जी जी, सोने की ही बात कर रहे हैं.
देखिए, जैसे जैसे ये जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर और भी जो कोई सिलसिला होगा ग्लोबली, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं, सोने और चांदी के भी बढ़ जाते
जी,
हैं, ये प्रेशियस मेटल्स हैं. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखें, किसी ने देख लिया है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स में बहुत अच्छा नहीं है एज एन इन्वेस्टमेंट, खराब भी नहीं है. कुछ लोगों ने थोड़े शॉर्ट टर्म में लिया, वो कहते हैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में रिसर्च लें तो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है. लेकिन ये प्राइसेस जो है, ये अब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है
जी,
उसके ऊपर निर्भर है.
जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. एशियाई शेयर बाजार के 5 प्रमुख सूचकांक में से 4 आज नुकसान के साथ बंद हुए. निवेशकों की सक्रिय भागीदारी और लिवाली से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.15% लाभ में रहा. उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग के हेंगसेंग में 1.4% की गिरावट हुई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% नुकसान के साथ बंद हुआ. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.44% की गिरावट हुई. वहीं सिंगापुर में भी बिकवाली का दबाव बना और स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.07% नुकसान में रहा. यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक 3 में से 2 प्रमुख बाजार बढ़त के साथ चल रहे थे. लंदन का फुटसी 100 0.18% घाटे में था. वहीं जर्मनी का डेक्स 0.4% और फ्रांस का कैक 40 दोनों सूचकांक 0.4% ही लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे.
I look at the U.S. market. Well, two out of three U.S. major indices had a slim gain, while Dow Jones experienced pullback. Nasdaq inched up 0.07%, Dow Jones Industrial Average fell by 0.1%, and the S&P 500 marginally up by 0.08%.
यहाँ पर मैम आपका ध्यान हम यूरोपीय अर्थव्यवस्था की और पूरे यूरोजोन की अर्थव्यवस्था की ओर ले चलना चाहेंगे और जो वहां कह लें कि आपसी जो भू राजनीतिक स्थितियां देखी जा रही हैं, वैसे में वहां की पूरी इकोनॉमी किस दिशा में जाती दिख रही है और जो कह लें कि कोविड पहला कोविड का असर उसके बाद फिर यूक्रेन का संकट इन दोनों से कितनी मुक्त होती हुई उभरती हुई और खासतौर से फ्रांस में जो ताजा कह लें कि हालात दिख रहे हैं दक्षिणपंथी और वामपंथियों को लेकर या उदार व्यवस्था को लेकर वह क्या दर्शा रहा यूरोप की अर्थव्यवस्था को लेकर।
देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां यूरोप में काफी उथल पुथल हो रहा है। आपने खुद ही बताया कि फ्रांस में क्या हो रहा है, ये जो ये राइज ऑफ राइट विंग फोर्सेस और ये इस वजह से है। वो रिएक्शन अगर आप देखें उनके देश में बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुआ है, अफ्रीका से आए हैं। अभी तो हम सीरिया की बात नहीं कर रहे, सीरिया तो वहां तक पहुंचे ही नहीं है, टर्की तक पहुंचे हैं, लेकिन अफ्रीकन इमिग्रेंट्स बहुत आए हैं पहले से ही। जर्मनी जाएं, जर्मनी में बहुत तुर्की लोग हैं, ये भी काफी सालों से हैं। तो ये जो इमिग्रेशन का जो सिलसिला है यूरोप में, उससे लोग घबरा गए हैं। अब आप देखें व्हाट्सएप पे छोटे छोटे आपको ये छोटे क्या कहते हैं मीम्स वगैरह आते हैं और कहते हैं कि अब हमारे देश में यूरोपीय देश में हमारे पास 40% लोग हैं जो यहां के नहीं है। ये नेदरलैंड्स में कह रहे हैं, एम्स्टरडैम, जर्मनी, फ्रांस, 40% लोग। वो कहते हैं ये तो ठीक है, हमें बताया जाता है कि ये डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर कोई आप एशियाई देश में होते या अफ्रीकी देश में होते, वो लोग खुश होते अगर हम लोग उनके यहां चले जाते और 40% हमारी आबादी हो जाती। तो ये नेचुरली उनके दिमाग में डर फैला हुआ। तो जो फार राइट की जो पार्टीज थी, जो बिल्कुल उनका कोई होल्ड नहीं होता था, अब फार राइट पार्टीज आ गई हैं क्योंकि ये इमिग्रेशन का डर आ गया है और उसके ऑपोजिट में अगर आप देखें तो लेफ्टिस्ट फोर्सेस भी स्ट्रांग हो गई हैं, जो पोलराइजेशन हो गया है। तो यूरोप में इस वक्त काफी समझ लीजिए फ्लक्चुएशन, वॉलिटिलिटी पॉलिटिकल स्तर पे और जैसे आपने कहा आर्थिक स्तर पे भी, क्योंकि ये जो यूक्रेन में हुआ, पहले कोविड हुआ, फिर जो यूक्रेन में हुआ और ये जो इसराइल और हमास में हो रहा है, उसका एकदम असर तो नहीं हो रहा, लेकिन जो वहां पर जो सिंपथी पैलेस्टाइन के लिए है, उस दूसरी तरफ ये भी है कि यूरोप ने ही ज्यूज के साथ इतनी नाइंसाफी की, यूरोप में ही हुआ है कि ज्यूज को उन्होंने निकाला और तो वो उनके ऊपर इतनी गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। अब ये बिजनेस मैटर्स में ये बात कर रहे हैं, पर ये सारी चीजें जो है ये बिजनेस के ऊपर भी बिल्कुल असर करती हैं, जो आर्थिक स्थिति है इनके ऊपर भी निर्भर होती है,
यानी कहीं न कहीं अर्थतंत्र प्रभावित होने के आसार दिख रहे आने वाले दिनों में। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि भारत सनराइज सेक्टर यानी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी बनकर उभरेगा। सरकार के प्रयासों से ये क्षेत्र आने वाले दिनों में भारत को वैश्विक अगुवा बनाने में समर्थ होंगे। प्रधानमंत्री ने आज विज्ञान भवन में विकसित भारत की दिशा में एक यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन विषय पर आधारित कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत की नीतियां, इसकी कार्यशैली, उद्देश्य और निवेश के बढ़ते अवसर पूरी दुनिया के लिए प्रगति के आधार बन गए हैं। यहां पर हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, हम कहां तक पहुंचेंगे बहुत संक्षेप में।
देखिए जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सनराइज सेक्टर में हम काफी आगे बढ़ गए हैं और बढ़ने वाले हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में।
जी,
All right, look at the oil prices now. Brent and WTI crude trading nearly 1% down in the global crude market today. Brent crude decreased nearly by 1% to $79.03 per barrel. U.S. West Texas Intermediate WTI is down by 0.84% to $75.17 per barrel when reports last came in. Thank you, Sushma Ramachandran, for being with us. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end with marginal gain. Sensex closes at 81,455. Nifty 24,857. World Today wants to invest in India, and world leaders are positive about India, says Prime Minister Narendra Modi. And gold jewelry demand decreases 17%, reveals World Gold Council's second quarter 2024 gold demand trends report. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and Manoj Pathak signing off. Namaskar.